नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मेरी नई कहानी आकांक्षा। 1984 की होली के दिन ब्यास बाबू के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बिहार के उस छोटे से शहर में बेटी का जन्म शुभ तो नहीं मानते थे, पर चूंकि यह पहली संतान थी तो अभी भविष्य में कुछ अच्छा होने की उम्मीद बची थी। सुना है कि ब्यास बाबू ने एक महीने तक जो भी घर आया उसे बच्ची की खुशी में मिठाइयां खिलाईं। लोग कहते, देखो कितने भले आदमी हैं, वरना बेटी होने पर कौन मिठाई बांटता है, ईश्वर उन्हें अगली बार बेटा जरूर देगा, बेचारे। 1.5 वर्ष बाद ही व्यास बाबू के घर राशि भी आ गई। इस बार तो मिठाई भी ना बटी, सारी उम्मीद जैसे टूट सी गई। बेटी के पिता तो दरिद्र होते ही हैं, उस पर जिसकी दो दो बेटियां हो जाएं उनका तो भगवान ही मालिक है। व्यास बाबू एक सरकारी कॉलेज में अध्यापक थे, मासिक आय कभी कभार ही आती थी और जब आती तो पिछला उधार चुकाने में एक दो दिन में खत्म हो जाया करती थी। दोनों बच्चियों का दाखिला स्कूल में करवाने का समय आया। उस समय कॉन्वेंट स्कूलों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। एक तो यह बड़े गौरव की बात थी कि मोटी फीस देकर वे अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, और उस पर लोगों का यह विश्वास था कि वहां कदम रखते ही 4-4 साल के बच्चे भी फरबट अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। व्यास बाबू ने तुरंत हिसाब लगाया कि यदि 200 रुपए महीने के जमा किए जाएं, तो 20 वर्षों बाद भी 25 लाख नहीं जोड़ पाएंगे, और यदि बेटियां अंग्रेजी बोलने लग गई तो दहेज वैसे भी काफी कम हो जाएगा, NRI दामाद उतार लाएंगे, प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी। उस पर यदि डॉक्टर या इंजीनियर बन गई तब तो बिना दहेज के ही निपट जाए शायद दोनों। सो उन्होंने दोनों बेटियों का दाखिला शहर के एक जाने माने कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। पर नामांकन के बाद पता चला कि ये 200 रुपए की गणित कुछ ढीली सी पड़ गई। स्कूल की किताब, कापियां, कपड़े, कागज और अलग अलग तरह की फीस भरना व्यास जी को बिल्कुल नहीं भाता, परंतु दहेज की मोटी रकम याद आते ही बड़े भारी मन से वे ये सारे खर्चे किए जा रहे थे। व्यास जी मनोविज्ञान के अध्यापक थे, वे क्या पढ़ाते यह तो वही जाने, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने किताबों को हाथ लगाते भी नहीं देखा था। रोज सुबह उठते ही उन्हें उनका नाश्ता तैयार चाहिए होता। यदि पत्नी से थोड़ी भी देर हो जाती तो वे अपना रौद्र रूप धारण कर लेते थे। मारपीट और चिल्लाना तो आम सी बात थी, पत्नी को कष्ट देने के लिए उनकी रसोई में रखे अचार के मर्तबान गिराकर जरूर तोड़ देते। इन सब के बाद वे स्कूटर निकालते और कॉलेज चले जाते, एक दो घंटे वहीं बिताकर घर में कर्फ्यू लगा देने को वापस आ जाते। व्यास बाबू की पत्नी मेरी माँ आरती जीवन से कितनी संतुष्ट थी यह तो पता नहीं, पर मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। वे उच्च पद पर आसीन जिलाधिकारी की 3 बेटियों में से मंझली थी। मेरे मामा सबसे बड़े थे। नाना जी ने ठीक 18 वर्ष की होते ही सभी बेटियों का ब्याह कर दिया। माँ के 20वें जन्मदिन के ठीक एक दिन के बाद मैं पैदा हुई और अगले ही वर्ष राशि। माँ को हम दोनों से कोई लगाव नहीं था, वे बस अपने पति को उनकी पीठ पीछे कोसती, बेमन से घर के सारे काम करती और कभी कभार पास के PCO से अपने माता पिता को फोन कर लेती थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी कारागृह में उम्र कैद की ऐसी सजा काटनी है जहां दिन प्रतिदिन प्रताड़ना बढ़ती ही जा रही है। कभी कभार उन्होंने लड़ने की भी कोशिश की, अपना नामांकन शहर के महाविद्यालय में करवाया और दोनों बच्चियों को सुलाकर घर पर ताला लगा कक्षा के लिए भी चली जाती। पड़ोसियों को दोनों बहनों की रोने की आवाजें सुनाई देती तो वे कहते, कैसी माँ है, क्या करेगी ऐसी पढ़ाई का, इतने छोटे छोटे बच्चे कौन छोड़ता है अकेला भला। पर माँ की मनोस्थिति व्यास बाबू ना समझे तो कोई और क्यों समझता। इतने संघर्षों के बाद भी उन्हें डिग्रियां तो कई मिली पर नौकरी नहीं मिली, वे भी प्रोफेसर बनना चाहती थी। धीरे धीरे उनकी चिढ़ बढ़ती गई और वे और कठोर होती चली गई। हम दोनों बहनें आपस में खूब लड़ती हर छोटी बात पर। मैं 3री कक्षा में पहुंच गई थी और राशि 1ली में। जान पहचान के लोग हमें ऐसे देखते जैसे अपने माता पिता के सारे दारिद्र का कारण हम ही हों। अचानक एक दिन घर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। ठीक तरह से समझ पाने के लिए हम अभी बहुत छोटी थी, पर इतना जरूर स्मरण है कि जो भी घर पर आता हमसे पूछता, क्यों लड़कियों, भाई आने वाला है, इस बार सब बढ़िया ही होगा। मैं भी खुश हो गई, छोटा भाई तो मुझे भी चाहिए था। पर इन सब में कहीं उस 7 वर्ष की बच्ची को यह महसूस हो रहा था कि जो आने वाला है वह सबके लिए कितना खास है। नानी जी घर पर आ गई और 3 दिन बाद माँ अस्पताल से एक छोटे से बच्चे को ले आईं। हम बहनों को शुरू के कुछ दिन नानी जी उसके आसपास भी नहीं आने देती। नानी की झिड़कियों की हमें आदत थी, हम दूर से ही उसे देखा करती। व्यास बाबू की आंखें ऐसे चमक उठी मानो जैसे कोई जंग जीत ली हो। अब वे दरिद्र नहीं रहे, उनकी वृद्धावस्था का जैसे बीमा हो गया था। व्यास बाबू ने फिर गणित लगाया, लड़कियों को स्कूल से निकाला जाए, अब तो बेटे को लायक बनाना है और शादियों का खर्चा। सो जोड़ तोड़ के बाद निर्णय लिया गया कि स्कूल चलने देते हैं, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, दहेज के पैसे तो जोड़ ना पाएंगे, सो पढ़ाई लेते हैं जैसे तैसे। छोटी सी आकांक्षा को गोद में बिठाकर एक दिन बड़े फक्र से बोले, देखो शर्मा जी का जैसे ही बेटा हुआ उन्होंने अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल से निकाल दिया, हम तो नहीं ना निकाले तुम दोनों को। मैं तब उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई, पर मेरे मन में कई सवाल उठे जिन्होंने मुझे उन्हें कभी भूलने भी नहीं दिया। मैंने पहली बार एक बोझ सा अनुभव किया अपने ही पिता के एहसानों का, और समय के साथ यह बोझ बढ़ने भी लगा। रौनक को सभी लाड करते, मैंने पहली बार अपनी माँ को किसी से प्रेम करते देखा। मुझे तो उनके स्पर्श का भी कभी अनुभव नहीं हुआ, पर उन्हें भाई को पुचकारते देख अच्छा लगता। समय बीता और माँ की झिड़कियां और व्यास बाबू की चिंताएं दोनों ने बढ़कर भीषण रूप ले लिया। हर रोज की तरह सुबह माँ के चिल्लाने से होती, उठ जाओ दोनों, इन्हीं लोग में लगे रहे हम, बार बार आके नहीं उठाएंगे, किचन में काम है हमको। मैं उठकर स्नान कर गई, तैयार होने के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म उठाई, स्टॉकिंग्स में एक बड़ा सा छेद हो रखा था, सो सुई धागा लेकर उसे ठीक करने बैठ गई। फिर मैंने यूनिफॉर्म पहनी और बस्ता उठाकर स्कूल की तरफ चली गई। जब मैं कक्षा में पहुंची तो मॉनिटर बोला, आकांक्षा तुम्हें मिस अर्पिता बुला रही है, स्टाफ रूम में मिलाओ। मैं डर गई, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की थी। अंदर आने की इजाजत मांगकर जब मैं मिस के पास गई, उन्होंने बड़े प्यार से बड़े धीरे से कहा, आकांक्षा बेटे आपकी स्कर्ट अब काफी पुरानी हो गई है, मम्मी से कहना बदल दें। मुझे अचानक बड़ी शर्म आई, जब तक कुछ आवश्यक न होता टीचर मुझे कभी नहीं टोकते थे, स्कर्ट इतनी खराब हो गई थी। मैं परेशान सी हो गई, माँ से कैसे कहूँ कि नई स्कर्ट दिलवा दें, उनके पास पता नहीं पैसे हों ना हों। इसी उधेड़बुन में कब टिफिन ब्रेक हो गया पता भी ना चला। लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी और बाकी बच्चे अंदर आने लगे। आज मुझे सिर्फ दूसरी लड़कियों की यूनिफॉर्म दिख रही थी, उनकी चमकती स्कर्ट ब्लाउज, साफ सुथरे जूते, सफेद मोजे और नई सी बेल्ट और टाई, बालों में चमकते हुए लाल फीते, सब कितना अच्छा था। और दूसरी तरफ मेरी स्कर्ट ने 3 साल में अपना रंग बदल लिया था, गहरे भूरे रंग ने जैसे सफेदी ओढ़ ली हो, ब्लाउज पीली पड़ गई थी, टाई और बेल्ट के रेशे निकल आए थे, माँ ने बाल ऐसे कटवा दिए थे कि फीता लगाने की जरूरत ही नहीं थी। स्कूल का दिन जैसे तैसे खत्म हुआ। घर लौटते वक्त रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करती जा रही थी कि घर पर बिजली हो और कम से कम आधा घंटा पंखा चल जाए। मई की गर्मी ने जान ले ली थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा था। घर पहुंची तो रोज की तरह बिजली नदारद। माँ रौनक को पंखा झल रही थी, मुझसे बोली, जल्दी नहा के खाना खा लो, हमको बर्तन भी धोना है, पानी चला जाएगा फिर दिक्कत होगा। ये सबका बेटी लोग इतना काम कर देती है, यहाँ तो इन्हीं लोगों का काम करते करते जान जाता है, माँ बोलती रही और मैं नहाने को चली गई। फिर रसोई से खाना ले लिया, माँ अब भी बोले जा रही थी, सवेरे से काम करते करते दम जाता है हमारा, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। रौनक केवल 5 साल का था, पर उससे पता था कि ये सारी बातें उसके लिए नहीं थी। वह कभी कभी जब माँ की तरफ देख पड़ता तो वह कहती, तुम खाओ बउआ, खिला दें क्या। खाने के बाद सीधा पढ़ने बैठना होता था। इतने में व्यास बाबू आ जाते और माँ एकदम चुप हो जाती। ऐसे माहौल में नई स्कर्ट लेने की बात कैसे करती। मैं तो सामने किताब रखकर मौके का इंतजार कर रही थी, साथ ही मन में यह ग्लानि भी थी कि माता पिता पर पहले से इतना बोझ है, वे मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं एक नई मांग लिए खड़ी हूँ। इतने में व्यास बाबू बोले, बउआ का नया यूनिफॉर्म सिलवा लेते हैं, बेचारा 6 महीना से एक के शर्ट पहन रहे हैं, जाड़ा के लिए कोट भी अभी ले लेते हैं, सस्ता मिलेगा ना अभी, बउआ कोट पहन के बड़का हाकिम लगेंगे। मैंने सोचा शायद अभी पैसे हैं घर में, यही मौका है, मेरी स्कर्ट भी आ ही जाएगी। पापा मिस बोली हैं स्कर्ट बदलने के लिए। अचानक ही कमरे का माहौल बदल गया। इससे पहले कि व्यास बाबू कुछ बोलते, उनकी नजर दरवाजे पर टंगी मेरी स्कर्ट पर गई। उन्होंने नजरें झुकाई और माँ से कहा, जरा लाइए स्कर्ट। माँ ने मेरी स्कर्ट खूंटे से उतार कर उन्हें दे दी। घिसे हुए कपड़े और उड़े रंग को देखकर शायद उन्हें थोड़ी सी शर्म आई। मुझे लगा कि शायद अब नई स्कर्ट मिल जाएगी। मैं बड़ी खुश हो गई। अर्पिता मिस ने ठीक ही किया कि टोक दिया, वरना किसी का ध्यान भी नहीं जाता। वैसे भी इतनी सी चीज पर किसका ध्यान जाता है। कुछ देर बाद व्यास बाबू ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और माँ को साथ लेकर चले गए। मेरी नई स्कर्ट आएगी। मैं इतनी खुश थी कि गर्मी और अंधेरे का कुछ पता नहीं चला। राशि ने लालटेन में मिट्टी का तेल भरा और जलाकर ले आई। अंधेरा होने के बाद हमें साथ बैठकर पढ़ना पड़ता था। आज हम जला दिए, कल तुम्हारा बारी है लाइट जलाने का, उसने झल्लाकर कहा और वहीं बैठकर पढ़ने लगी। पर मेरे मन में तो नई स्कर्ट के सपने उड़ान भर रहे थे। इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था, तभी स्कूटर के लौटने की आवाज सुनाई दी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। व्यास बाबू के हाथ में यूनिफॉर्म की दुकान के थैले देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने बैठक से ही आवाज दी, रौनक बाबू जरा आइए, पहन के देखिए कपड़ा सब ठीक आया है कि नहीं। यह कहते हुए उन्होंने मुझे भी एक थैली पकड़ा दी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरी नई स्कर्ट! मैंने थैली में हाथ डालकर स्कर्ट निकाली। सामने रौनक अपनी नई शर्ट और उतनी ही गर्मी में कोट पहन के बड़ा खुश खड़ा था। व्यास बाबू उसे देखकर गर्व अनुभव कर रहे थे और माँ भी बड़ी प्रसन्नता से नए कपड़ों को उसके शरीर पर टिका रही थी। और मैं वहीं एक कोने में खड़ी अपने आंसुओं को रोके यह सब देख रही थी। मेरे हाथ में मेरी वही पुरानी स्कर्ट थी, उसे भूरे रंग में रंगवा कर ले आए थे। वे बोले, रंग जरा सा उड़ गया था तो रंगवा दिए, नया लेने का क्या जरूरत है, बेकार में 80-85 रुपया लग जाता। स्कूल वाला मिस लो को फालतू चीज पे बहुत ध्यान जाता है, ये नहीं कि पढ़ाएं तनी ठीक से। अब जाओ पढ़ो, कपड़ा लत्ता पर ध्यान मत दो। उस रात मैंने अपनी स्कर्ट छोड़ी ही नहीं। बड़ी देर से दबा कर रखे आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कमरे के कोने में खिड़की से सटाकर मैंने अपनी चौकी लगाई थी। आसमान में सितारे रोज की तरह टिमटिमा रहे थे। मैं बहुत उदास थी, पर रात का यह समय मेरे लिए सबसे खास होता। मैं सारे दिन की बातें तारों को बताती, वे बड़े इत्मीनान से सुनते। मैं कभी रोती, कभी हंसती और कभी देर तक बातें करती। आज फिर कहीं चोट लगी थी और पीड़ा भी बहुत हो रही थी। हमको स्कर्ट नहीं मिला, हमको क्यों नहीं मिला? मैं रात भर जवाब ढूंढती रही, पर कुछ समझ में नहीं आया। आज भी इस धरती के हर कोने में कितनी ही बेटियां ऐसे ही किसी सवाल में उलझी हैं। क्या हम में से कोई भी उनसे नजरें मिलाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? शायद यह हमारे घर परिवार की कहानी ना हो, पर हमारे समाज की तो है ही। आज भी कितने ही घरों में ऐसी ही कोई कहानी दोहराई जाती है। जब तक ऐसी कहानियों का अस्तित्व है, क्या हम स्वयं को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कह सकते हैं? यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रचनाएं आप तक पहुंच सकें। आप सभी से मिले सहयोग और प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।